सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज भावनगर में आके आप सबके दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कैसे पिछले कुछ घंटों से जहां सत्संग का आनंद ले रहे हैं सभी, और क्या जो जो एक एक बच्चे के मुंह से, बड़े के मुंह से, बुज़ुर्ग के मुंह से, युवा के मुंह से, चाहे कोई भी भाषा रही, हिंदी रही, अंग्रेज़ी रही, गुजराती रही, मराठी रही, तो जो जो भी सुना, सभी का संदेश क्या था कि ये एक इंसान अपनी असली पहचान कर ले। ये आत्मा इस शरीर में है, पर ये शरीर को ही मान लेती है सच्चाई, जबकि सच्चाई तो ये है कि ये शरीर ने तो कुछ साल जीने हैं और फिर ये शरीर का साथ छूट जाएगा, पर इस आत्मा की यात्रा तो लंबी है। तो ये जो परमात्मा है, उसको चाहे हम किसी भी नाम से संबोधित करें, जहाँ आस्था है, ये वही परमात्मा है जो एक कुरुक्षेत्र के मैदान में ये विराट स्वरूप के नाम से था, या ये अभी निराकार के रूप से, इसको भगवान, अल्लाह, किसी भी नाम से हम जैसे आस्था रखते हैं, बुलाते हैं, पर ये मूल बात तो ये है कि ये आत्मा इस परमात्मा से आई है। ये जो मालिक है, इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, और ये तभी हो सकता है जब हम ये अपना जीवन, इस कि ये लड़ियाँ चल रही हैं जीवन की, ये सांसें हैं हमारे पास, तो ये संभव हो जाता है, क्योंकि जीते जी ही इसकी प्राप्ति होती है, इसको जाना जाता है। तो अभी वो सुनहरा अवसर हमारे पास है, नहीं तो जब ये सांसें ख़त्म हो जाएंगी, जब ये लगता है कि बचपन में, कि अभी तो उम्र बहुत है, इसकी प्राप्ति बाद में कर लेंगे, ये भक्ति वाला जीवन बाद में शुरू करेंगे, फिर युवा अवस्था में भी ये टाल दिया जाता है अगर, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि बुज़ुर्गी तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना, क्योंकि किसके कितने श्वास हैं ये तो किसी को भी नहीं पता। तो हर हाल में, हर पल में इस परमात्मा को जानने के बाद अगर इसे शुक्रिया करेंगे, तो वो ही हर पल को हमारा सुनहरा बना सकेगा कि कैसे हम, अगर इंसान हैं, इस संसार में आए हैं, तो अपने जीवन को एक ऐसा रूप दें, एक ऐसी चाल चलें जो सच में एक मानव वाली चाल होती है। क्योंकि ये सिर्फ तन मनुष्य वाला है, तो भाव अगर ना हो, एक मानवीय गुण ना हो, ये एक ह्यूमन वैल्यूज ना हो, तो मनुष्य के तन में आए तो ज़रूर हैं, पर फिर भी मनुष्य नहीं है। अगर ऐसा होता कि हर इंसान जो इंसान बन के आया है, तो ग्रंथों में ये ना लिखने की ज़रूरत पड़ी होती कि मनुर्भव, कि मनुष्य बनो, तो मनुष्य तो है ही। जैसे अगर कोई जानवर होता है, किसी कुत्ते को नहीं बोला जाता कुत्ते बनो, किसी बकरी को नहीं बोला जाता बकरी बनो, तो क्यों मनुष्य को कहा जा रहा है? क्योंकि बाकी सब जो भी इस संसार में है, इस प्रकृति का हिस्सा है, वो सब अपना कार्य बिल्कुल ठीक तरह कर रहे हैं। उसको इस मालिक ने जो कार्य करने बनाया है, तो वो यही कर रहे हैं। सिर्फ इंसान ही है जो अपनी आँखें बंद कर लेता है इस सच्चाई से, और संसार में आने के बाद इस संसार की चकाचौंध में, इस माया में इतना घुल जाता है कि अपना असली मकसद ही भूल जाता है कि किस वजह से आए थे इस संसार में। तो जब एक अपनी पहचान हो जाती है इस परमात्मा की पहचान द्वारा, तो पता चलता है कि हमारा असली मूल क्या है। तो जब ये पता लगता है, तो हर पल हम इस निराकार के एहसास में रहते हैं। फिर हर पल में एक जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य हमारा एक ऐसा कार्य है जिसका एक नतीजा हम अपने आप को भी बेहतर करेंगे, और आसपास के ये पूरे अपने मोहल्ले में ही नहीं, अपनी पूरी शहर में नहीं, इस पूरी दुनिया में एक वरदान का स्वरूप बनेंगे कि कैसे अगर हम अपने दिल में प्यार रखें, नफ़रत ना करें, अगर अपने दिल में एक करुणा वाले भाव रखें, अपने दिल से हम तंग दिल्ली हटा दें और विशाल कर लें अपने दिल को, अगर हम ये सोचें कि अगर किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया है तो हमने उल्टा उसको बुरा नहीं कहना क्योंकि उसने हमें बुरा कहा है, बल्कि उस समय वो मोमेंट तो बहुत ही कठिन होता है, वो अवसर, वो पल, तो उस समय हमें कैसे प्यार से अपने आप को कंडक्ट करना है, पेश आना है उससे, ये चीज़ तो हमें हर पल अपने अंदर जब ढालनी है, जब वो हमारा चरित्र ही बन जाएगा, तो ऐसे समय में भी हमें बिना किसी एफर्ट के, बिना कोई विशेष जोर लगाकर ऐसा अपना स्वभाव का ये रूप निकलेगा, क्योंकि फिर वो जब एक स्वभाव बन ही जाता है, ये दिल में उस तरह से हम दूसरों का भी आदर करते हैं, दूसरों को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि हो सकता है कोई उस समय उसके टेंशन चल रही हो, कोई परेशानी से गुज़र रहा हो, इसीलिए उस अगले व्यक्ति ने हमें कुछ ऐसा कह दिया। तो जब हम ऐसा सोच के हर बात को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ उसको प्यार ही देते हैं तो हमारा जीवन वाकई ही एक मुबारक जीवन बनता है। कैसे हम ये देखें कि ये संसार में चाहे कोई किसी भी कल्चर का है, कैसा भी खाना खाता हो, कैसे वस्त्रों का एक सुंदरता से अपने शरीर को सजाया, कैसा भी वो एक भाषा का प्रयोग करता है, हमें उससे उस वजह से नफ़रत नहीं करनी क्योंकि ये हमारे जैसा नहीं है, बल्कि ये तो वो बात हो गई कि हर एक की अपनी खुशबू है, हर एक की अपनी सुंदरता है, हर एक से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। तो ये यूनिफॉर्मिटी की तरफ ना जाएं, बल्कि यूनिटी की तरफ जाएं, कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, कि कैसे हमने एक एकत्व का प्रतीक इस संसार को अगर बनाना है तो शुरुआत हमें पहले खुद से करनी है, कैसे हर एक में हमने फिर भेदभाव नहीं करने, हर एक से वो एक समदृष्टि वाली निगाह कि कैसे हमने हर एक को देखना है कि सब अपने हैं। जब ये परमात्मा का ही पता चल गया, ये पिता का पता चल गया, तो फिर इस पिता के तो सभी बच्चे हैं, तो कोई फिर जाति पाति ऊंच नीच कोई ऐसी बात ही नहीं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से ये दूरियां बनाने को कहें। फिर कोई वजह नहीं रह जाती कि हम अपने मनों में दीवार बना लें, हमारा सारा फिर ये फोकस एक ये दीवारें गिराने में रहना चाहिए कि कैसे हम प्यार के पुल एक मन से दूसरे मन तक बनाएं, कैसे एक हम एक ह्यूमैनिटी को जोड़ें, कैसे हम अपने जीवन को संवार लें, कैसे हम हर तरफ एक ऐसा एफर्ट करें कि दूसरे का भी जीवन हमारी वजह से कोई आराम मिल सके, उसको हमसे मिलने के बाद किसी व्यक्ति को ये लगे कि इस इंसान से मिलके अच्छा लगा, इसके गुण जो हैं हमें भी अपनाने हैं। फिर कैसे हम हर एक को एक एकता का मैसेज सिर्फ बोल के नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपने कर्मों द्वारा ऐसे पहुंचा सकते हैं ये अमन भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। फिर एक हार्मनी इन वननेस वाली बात कि कैसे हमने एक दूसरे का सहयोग करना है, कैसे हमने इस संसार को फिर एक आए तो हैं, अपनी जिम्मेवारी भी निभानी है परिवार के लिए भी, या जो भी कभी बचपन में स्कूलिंग, बड़े होके कॉलेज, फिर अपना एक गृहस्थी का उस तरह से एक मार्ग, काम काज, जैसे भी परिस्थिति जीवन में है, तो वो सब तो करना है, वो तो ड्यूटी है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हमारा कर्तव्य है, उसको ज़रूर निभाना है, पर इस दुनिया में खो नहीं जाना। ये सब करते हुए भी एक भक्ति भरा जीवन उसको जीना है। जैसे एक उदाहरण, एक अगर कोई हमारा प्रिय मित्र है तो उसके बारे अगर हम सोच रहे हैं तो हमें कोई सोचने के लिए अलग विशेष समय नहीं निकालना है। उसके लिए हमारे अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छी सोच करने के लिए कुछ खास अलग नहीं करना। वो सोच तो हमारी, चाहे हम खाना खा रहे हो तब भी हम उसके भले के लिए मांग मांगते हैं, चाहे हम और कोई कार्य कर रहे हों तो भी सोच रहे होते हैं कि अपने मित्र को मिले हुए बहुत समय हो गया, जल्दी मिलना चाहिए। तो ऐसे करते हुए हमें ये अपने मित्र के लिए जो प्यार की भावना है, जो एक मगन है हम उसकी दोस्ती में, उसके लिए अलग समय नहीं निकाल रहे, अपने कार्य करते हुए उसको याद कर रहे हैं। वैसे ही जीवन में भक्ति को करते हुए कोई खास समय नहीं निकालना। जब भी हम जो भी कर रहे हैं, हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म ऐसे बन जाते हैं कि उसमें भक्ति हर समय रच जाती है, तो कैसे ये भक्ति की शुरुआत हो। ये भक्ति को भी हम अगर ये मान लें कि हमने बहुत ही रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पढ़ लिए हैं, हम तो अपनी आस्था रखते हैं कहीं, वो सब मुबारक है, पर पहले किसी भी धार्मिक स्क्रिप्चर को अगर हम पढ़ लें तो पढ़ने में यही संदेश आता है कि इस परमात्मा को जाना जा सकता है, ये विराट स्वरूप देखा जा सकता है। तो जब हम इसकी जानकारी ले लेंगे तो ही ये असली मायने में हमारी भक्ति शुरू होगी। फिर वो भक्ति भी वैसी होगी जिसके बदले में हम इस परमात्मा से कुछ ये नहीं चाहेंगे कि परमात्मा हम तेरी भक्ति कर रहे हैं, इसके बदले हमें कोई ये चीज़ चाहिए कि वो चीज़ चाहिए, नहीं। फिर वो एक समर्पित भाव से भक्ति शुरू होती है, फिर ये मान के कि प्रभु तूने इस संसार में हमें लाया है, हमें सांसें दी हैं, तो ये सांसों में बस हर सांस में तेरा शुक्रिया हो। तो कैसे फिर हमारे स्वभाव में भी ये रहता है कि हम हर पल एक सुमिरन कर रहे होते हैं, किसी की भी सेवा करने से कतराते नहीं, और सेवा करते हुए भी भाव ये होते हैं कि हम किसी की मदद करके अपना नाम नहीं कमा रहे हैं, बल्कि ये मान के कि ये तो हमारा फ़र्ज ही है, ये तो हम कर ही नहीं रहे, परमात्मा ने एक बल बख्शा, नहीं तो उसकी कृपा है कि हम ये सेवा भी कर पा रहे हैं। और अपने आप को इस सत्संग से भी जोड़कर, क्योंकि जब सत्संग में आते हैं तो संतों की वाणी सुनते हैं, ये संत मति को अपनाते हैं कि संतों की सोच हमारी सोच बन जाती है। और युगों युगों से यही बात है, किसी भी संत की वाणी खोल के देख लें तो उसमें हर संत ने यही समझाया है कि अपने जीवन में ऐसे गुण लाओ जो कि एक प्यार की रगर पर हों, एक वो मार्ग हो, एक सत्य के मार्ग पर हो। और फिर जब हमारे हिस्से वो सत्य आ गया तो हमने अपना मुख तो उजला कर लिया, हमारे ऊपर वो रोशनी, वो कृपा इस ब्रह्म ज्ञान की हो गई, तो फिर वो हर एक तक पहुँचाने क्या जो जिम्मेवारी बनती है। तो ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में सोचें कि हमें किस प्रकार का इंसान बनना है, वो सोच हमारी है, वो दातार ने हमको चेतनता बख्शी है, एक विवेक बुद्धि दी है, अब उसका उपयोग कैसे करना है वो हमें ही चुनाव करना है। और ये चुनाव अच्छी तरह सही तरीके से तभी होता है जब इस मालिक का एहसास हो मन में, क्योंकि फिर उस एहसास के साथ हम कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य गलत नहीं होता, वो फिर सही होगा अपने आप। तो जैसे एक उदाहरण भी आ रहा है ध्यान में कि दो मित्र थे बच्चे, तो वो बच्चों ने, एक के पास बहुत खूबसूरत पेंसिल्स थी और दूसरे मित्र के पास बहुत ही सारी टॉफियां थी, तो वो दोनों मित्रों ने बात करते हुए कहा कि ऐसा करते हैं, तुम मुझे अपनी सारी टॉफियां दे दो और मैं तुम्हें अपनी पेंसिल सारी दे दूंगा। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो वो एक मित्र जिसके पास टॉफ़ी थी उसने एक टॉफ़ी वो छुपा कर अपनी जेब में डाल ली और बाकी उसको दे के बोला, ये लो मेरी सारी टॉफियां रख लो। और जिसके पास पेंसिल्स थी उसने वो सारी पेंसिलें दे दी उसको, अपने पास कुछ नहीं रखा। फिर जब वो घर गए, रात हो गई, तो जो मित्र जिसने अपना सब कुछ दूसरे मित्र को दे दिया था, अपनी सारी पेंसिल्स दे दी थी, वो तो बहुत ही खुशी से सो गया कि मेरे को इतनी सारी टॉफियां मिल गई हैं। उसने वो टॉफियां खाई भी और आनंद भी लिया उसका। पर जिस मित्र ने एक टॉफ़ी अपने पास छुपाकर सारी पेंसिल्स दूसरे मित्र की ले ली थी, वो रात को ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि उसके मन में यही विचार थे कि दूसरे ने मेरे साथ चीटिंग तो नहीं करी, कहीं कोई सबसे सुंदर पेंसिल उसने छुपा तो नहीं ली। तो अगर हम ऐसे ही मन में भाव बनाएंगे कि हमारे पड़ोसी को हम चालाकी कर रहे हैं और उससे हम ये एक्सपेक्ट करें कि उसने भी आगे से की हो, तो ऐसे विचारों को दूर रखते हुए अपने जीवन से, और ये पड़ोसी से मतलब सिर्फ वो नहीं कि घर के बिल्कुल साथ रहने वाला, ये तो हर एक को अगर वैसे देखें कि ये संसार में जहाँ हम रहते हैं हर कोई ही अपना है, हर कोई ही अपना पड़ोसी है, तो कैसे हर एक से प्यार करना है, हर एक से ये सोचते हुए कि हमने एक दूसरे के सहयोग से सहारा बनना है, एक दूसरे का हर एक के लिए एक दिल से उपकार करना है। तो ऐसी सोच को हमने जब धारण किया करना है तो ही वो एक असली रूप में एक शुभ सोच है, एक अच्छी सोच है, एक संतमति है। तो फिर वही बात कि अगर पड़ोसी से हम ऐसा नाता जोड़ें, ना कि ऐसा कि हमारे को उससे तकलीफ़ है तो हम उसको नुकसान पहुंचाएं, जैसे एक शायर ने भी बहुत अच्छा ये लिखा है, अरे ओ जलाने वाले ये तेरा ही था नशे मन जिसे तूने फूंक दिया मेरा आशियां समझ के। कि पड़ोसी को तो ये लग रहा था कि उसने अपने पड़ोसी का घर जलाया है, पर वो चिंगारी ऐसे उसके अपने घर पे ही पड़ गई कि पड़ोसी के घर को तो नुकसान कुछ नहीं हुआ, उसका अपना ही घर जल गया। तो कैसे हमने अपने मन में ये भाव रखने हैं कि हम पड़ोसी के घर पे अगर लगी आग देखते हैं तो उसमें पानी बुझाने वाला काम करें, ना कि आग लगाने वाला। कैसे हमने मन में एक दया रखनी है हर एक के लिए, चाहे अपना हो बेगाना हो। और ये बेगानेपन का भी भाव तभी ख़त्म हो सकता है जब हम एक अपनत्व रखेंगे हर एक के साथ कि ये हर कोई इस संसार में हमारा है। तो किसी से फिर दिलों में ये दरारें नहीं आएंगी, ये दिलों से बस प्यार की भावना ही उपजेगी। फिर हम अपना एक रूप उसके आगे ऐसा रखेंगे कि हम आपकी सेवा करने के लिए ही इस संसार में आए हैं। तो वो भाव जब होगा तो असली रूप में हमारा जीवन एक सवर जाएगा। तो दासी आप सबका और ज़्यादा समय नहीं लेगी, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए ये अरदास इस प्रभु परमात्मा इस मालिक से कि जो तो इसकी पहचान करके एक भक्ति मार्ग पे अपना जीवन शुरू कर चुके हैं वो जीवन हर एक को मुबारक हो, और जिसको ये दात नहीं मिली वो भी ये दात को जल्दी प्राप्त करके अपने जीवन को संवार ले, क्योंकि यही एक असली धन है जो हमारे पास रहना है, ये जीवन काल में भी उपयोगी होगा और जब ये सांसें ख़त्म हो जाएंगी तो भी ये मोक्ष, ये मुक्ति इसी के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो कितना भी हम इस जीवन में अगर धन जोड़ते रहें तो भी वो सिकंदर वाली बात कि इतनी दुनिया पे उसने राज करके, इतना ज़मीन इतनी जायदाद बना के भी खुद जब रवाना हुआ, ये रुखसत हुआ, तो भी हाथ तो खाली थे। तो हमें क्या करना है जीवन में, हमें किस तरह का धन जोड़ना है, एक मेहनत करके अपने घर परिवार को एक आराम देने वाली घर तो बनाना मुबारक है, पर एक स्पिरिचुअल जो धन है, ये ब्रह्म ज्ञान की दात है, इसको अगर झोली में नहीं डाला तो फिर ये हीरे जैसा जन्म है कोड़ी के भाव गवा रहे हैं, वो बात सच हो जाती है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये असली जो कीमती चीज़ है, ये वस्तु है, जो मीरा ने भी कहा राम रतन धन पायो, कि ये जो धन है ये सभी के हिस्से आए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।